سرخیوں میں، प्रस्तुत है इसरो द्वारा GSAT-29 के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वैज्ञानिक विमान बसु और पत्रकार डॉक्टर निमिष कपूर।
इसरो ने अपने सबसे वजनी और शक्तिशाली बताए जाने वाले रॉकेट GSLV Mark 3D-2 के जरिए देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-29 को बुधवार को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। इस प्रक्षेपण को महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 अभियान और देश के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि उनमें इसी का उपयोग किया जाएगा। बासु जी, आप इस बड़ी सफलता को कैसे देखते हैं?
देखिए, जैसे आपने कहा कि ये जो रॉकेट हमने यूज किया इस बार, ये सबसे भारी था। इतनी भारी रॉकेट हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, और ये उपग्रह भी जो है GSAT-29, ये भी सबसे भारी उपग्रह जो कि भारत के भूमि से प्रक्षेपण किया गया। पहले इस वजन के जो उपग्रह होते थे उसे विदेशों से प्रक्षेपण करने के लिए जाना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि ये जो GSAT-29 है, ये खास किस्म का संचार उपग्रह है। जैसा कि पहले एक छोड़ा था GSAT-19, पर उसमें क्षमता काफी कम था, वो एक परीक्षण के लिए छोड़ा गया था, लेकिन ये पूरी तरह से जो है हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, यानी अति उच्च क्षमता वाली संचार उपग्रह, क्योंकि इसका जो क्षमता है जो हमारे दूसरे संचार उपग्रह है उसकी तुलना में काफी गुण अधिक है, 10 से 15 गुण। इसका मतलब यह है कि हम जितना चैनल्स अभी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं इनसैट के जरिए, GSAT-29 के जरिए हम बहुत ज्यादा चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। और भी कई इसका खूबी है, क्योंकि इसमें एक जो साधन है इसमें, जिससे कि हमारे दूर दराज के इलाके में, जैसे पूर्वोत्तर इलाके नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में, जहां पहाड़ी इलाका ज्यादा है, वहां ब्रॉडबैंड सर्विस जो है बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस। तो ये जो है, आज तो जैसे ब्रॉडबैंड सर्विस शहरों में उपलब्ध है, पर ग्रामीण इलाकों में और दूर के इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, वहां प्राप्त नहीं है इतना।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो DTH प्रणाली है या हमारे जो केबल के थ्रू हम जो चैनल देखते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने वाले समय में आ सकता है।
देखिए, DTH जो है वो दूसरा है। DTH तो डायरेक्ट टू होम है, वो सैटेलाइट से आप घर में सीधा जो है टेलीविजन के सिग्नल्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये GSAT-29 जो है, ये ज्यादातर जो है ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है, जो हमारे देहात इलाके हैं और शहरी इलाके हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा, और गांव के लोग जो है ज्यादा आसानी से इंटरनेट इस्तेमाल करने का सुविधा उपलब्ध कर पाएंगे।
हम श्रोताओं को बता दें कि GSAT-29 उपग्रह पर एक खास किस्म का हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जिसे GOI नाम दिया गया है। इससे हिंद महासागर में दुश्मनों के जहाजों पर भी नजर रखी जा सकेगी, ऐसा कहा जा रहा है। वासु जी, ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा जिसे GOI नाम दिया गया है, ये किस किस्म का है और ये पहले के उपग्रहों से जो कैमरे लगाए गए थे उनसे कितना अलग है?
देखिए, इसमें तो पहली बात ये है कि GSAT-29 जो स्थापित किया जाएगा, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा कक्षा में, जबकि हमारे दूसरे जो दूर संवेदनशील जो उपग्रह है, जिसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, वो ज्यादातर 600 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये GSAT-29 में जो कैमरा लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई से, बहुत ज्यादा दूरी से जो तस्वीर लेगा पृथ्वी के सतह का, इसलिए इसमें एक दूरबीन भी लगा हुआ है, टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन है, यानी ये बहुत छोटी चीजों को भी काफी अच्छी तरह से दिखा सकता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये भू स्थिर कक्षा में स्थापित है, तो लगातार ये जो है नजर रख सकेगी हमारे जो देश है उसके चारों तरफ के जो समुद्र है उसके ऊपर।
और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो देश के दूर दराज के इलाके हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व में संचार सेवाओं को ये और बेहतर बनाएगा, क्योंकि ये 3,423 किलोग्राम का इस उपग्रह का वजन है, जिसमें KU और KA बैंड के संचार ट्रांसपॉन्डर्स लगाए गए हैं।
देखिए, बात यह है कि दूसरे जो दूरसंचार उपग्रह इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनसेट है, जितने भी है, उसमें हम एक ही बीम को भेजते हैं सैटेलाइट से, यानी नीचे से एक बीम ऊपर जाता है और ऊपर से एक ही बीम नीचे आता है, जो कि सारे देश को कवर करता है, और उस बीम के अंदर जिसको फुटप्रिंट कहते हैं, उसमें हम कहीं भी एक एंटेना लगा के हम उस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये एक ही फ्रीक्वेंसी में ब्रॉडकास्ट करती है और इसमें हम बहुत किस्म के सिग्नल्स भेज नहीं सकते, जबकि ये GSAT-29 जो है छोटे छोटे अंक्स में सिग्नल को भेजेगी और बहुत वाइड बीम में नहीं, बहुत नैरो बीम में, नैरो मीन्स जो छोटे एंगल पे। और उसमें क्या होगा कि एक ही साथ ये कई किस्म के सिग्नल्स भेज सकती है, क्योंकि आजकल जो हम जो संचार उपग्रह इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ही सिग्नल नीचे से जाता है और वो हम फिर रिसीव कर सकते हैं, जबकि इसमें सिग्नल जाएगा नीचे से पर ऊपर से जो आएगा वो कई किस्म के हो सकते हैं। जैसे आप देखिए एक ही प्रोग्राम अगर हम अलग अलग भाषा में सुनना चाहते हैं तो वो इससे संभव होगा, क्योंकि इसमें इतने अलग अलग जो बीम्स नीचे आती है उसमें हर एक के लिए अलग वो प्रेफरेंशियली कर सकते हैं।
इसरो 3 साल में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष में देश के जो महत्वाकांक्षी मानव युक्त मिशन को 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम मानव रहित कार्यक्रम गगनयान की योजना दिसंबर 2020 के लिए है। तो आप इस उपग्रह के लॉन्च को और खासतौर पर जिसमें रॉकेट GSLV Mark 3D2 का प्रयोग हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो मानव युक्त मिशन है उसमें ये कैसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है?
ये जो रॉकेट है GSLV Mark 3, इसका जो अभी परीक्षण हुआ है ये भूस्थिर कक्षा के लिए करीब 4 टन पेलोड ले जा सकता है, यानी उपग्रह ले जा सकता है, और 10 टन पेलोड जो है उसको नीचे कक्षा में 600-700 किलोमीटर की कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। और हम अगर मानव को भेजने का बात सोच रहे हैं तो 10 टन या 8-9 टन का होगा वो जो अंतरिक्ष यान होगा, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो सफल परीक्षण है तो ये मानव को ले जाने के लिए काफी होगा। लेकिन उससे पहले हमें और भी बहुत परीक्षण करना है, क्योंकि देखिए मानव को भेजना और एक उपग्रह को भेजना अलग अलग चीजें हैं। मानव को भेजने के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जिंदा रहने के लिए जो जो चीज जरूरत होता है अंतरिक्ष में, और ये सब चीज अभी तक हमारे देश में विकास नहीं हुआ, इसको सब विकसित करना है और ये जब सब सही होगा तभी हम मानव को भेज सकेंगे या भेजने का बात सोच सकेंगे।
जी, जो लॉन्च व्हीकल है इसका भी हम आपसे यहां जिक्र करना चाहेंगे, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3, जिसे GSLV Mark 3 का नाम दिया गया है, GSLV Mark 3D2, इसका वजन जो है वो 641 टन बताया जा रहा है और जो पूरी तरह से भरे हुए 5 यात्री विमानों के बराबर है, और 43 मीटर की ऊंचाई वाला ये रॉकेट 13 मंजिल की इमारत से ज्यादा ऊंचा है। और दिलचस्प बात यह भी है कि जो अभी तक के ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल हैं उसमें सबसे भारी है और आकार में सबसे छोटा है। तो ये क्या खास है GSLV Mark 3D2 में, क्योंकि इसरो को बहुत सारी उम्मीदें इस लॉन्च व्हीकल से लगी हैं और ये भी कहा गया है इसरो ने कि अगर ये लॉन्च कामयाब रहता है तो इस ऑपरेशन को सफल घोषित करके और इसको आगे बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी इससे।
हाँ, जैसे आपने कहा ये तो अभी D2 का मतलब डेवलपमेंट फ्लाइट 2, यानी अब तक ये जो जितना भी GSLV Mark 3 का लॉन्च किया गया है वो पहले तो एक्सपेरिमेंटल था, उसके बाद डेवलपमेंट फ्लाइट हुए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये सिद्ध हो चुका है कि ये कामयाब है और आगे के जो फ्लाइट्स होंगे वो ऑपरेशनल फ्लाइट्स होंगे, और पहला ऑपरेशनल फ्लाइट ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जनवरी में जो हमारे चंद्रयान 2 है उसको छोड़ने के लिए किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो दूसरी डेवलपमेंट फ्लाइट है ये इसको सिद्ध कर दिया कि ये जो रॉकेट है ये रिलायबल है, इसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं। और जैसे कि 3 टन का हमने अभी जो छोड़ा है GSAT-29, वो 3 टन से ज्यादा भारी है, तो इतना भारी जो उपग्रह हम छोड़ सकते हैं।
यानी किसी भी दवाई को लॉन्च करने से पहले उसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो उसी तरह से इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को ऑपरेशनल बनाने से पहले उसके ये दूसरा डेवलपमेंट ट्रायल था GSLV Mark 3D2 जिसको नाम दिया गया, और ये अगर सफल होता है, जो अब सफल हो भी चुका है, तो इसरो बहुत जल्दी अब इसको ऑपरेशनल घोषित कर देगा, हम ये समझ के चलते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस नए रॉकेट को तैयार करने में 15 साल का वक्त लगा है और इस लॉन्च की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी, ऐसे आंकड़े बताते हैं। तो क्या भारत में इसका अनुसंधान हो रहा है और जितने भी हार्डवेयर से इसके तैयार किए जा रहे हैं वो सारा तकनीकी अनुसंधान और इसकी टेक्नोलॉजी देश में तैयार की गई या कुछ विदेशी सहायता भी?
नहीं, देखिए तकनीकी जो बात है वो सारी इसरो का अपना है, क्योंकि इस टाइप का टेक्नोलॉजी कोई भी देश आपको देगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक माना जाता है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो अभी मिशन छोड़ा गया GSAT-29 का, इसमें जो रॉकेट है और उसके बाकी जो पुर्जे वगैरह है, इसमें 90% जो है हमारी इंडस्ट्री से आया है। ये इसरो ने तैयार नहीं किया, इंडस्ट्री को स्पेसिफिकेशन दिया गया और इस इंडस्ट्री ने तैयार किया और इसरो ने उसको फिर असेंबल करके रॉकेट बनाया जिसका परीक्षण हुआ अभी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इंडस्ट्री जो है अब इतना समर्थ हो गया है कि वो इसरो के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सामान बना सकता है और आगे जो है ये बहुत फायदेमंद रहे। क्योंकि देखिए, एक बार ये साबित हो जाए कि हमारे GSLV मार्क 3 जो है वो रिलायबल है तो दूसरे देश भी हमारे पास उनके उपग्रह छोड़ने के लिए आएंगे। क्योंकि अब तक जो है हमने सिर्फ PSLV को विदेशी उपग्रह छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था क्योंकि वो बहुत रिलायबल है और लोगों को उसके ऊपर भरोसा था। तो अब ऐसा होगा कि अगर इसको भी माना जाए कि भरोसामंद है तो अब बड़ा उपग्रह छोड़ने के लिए भी विदेश के जो एजेंसीज है वो हमारे पास आएंगे, ऐसा उम्मीद किया जाता है।
और GSLV मार्क 3 में भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसे भारत में ही तैयार किया गया है और इसमें आपने बताया कि इंडस्ट्री का भी पूरा सपोर्ट है और एक बहुत बड़ा मौका ये भारतीय जो तकनीकी डेवलपमेंट है उसको भी मिल रहा है। और प्रोपेलेंट के तौर पर इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ये क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है, ये खासतौर पर कितने समय से इसका प्रयोग हो रहा है इस क्रायोजेनिक इंजन का, एक तो ये जानना चाहेंगे। और GSLV के साथ आपने जो PSLV का नाम दिया, तो ये PSLV और GSLV में क्या एक बारीक अंतर है जो इसको अलग बनाता है?
पहले तो मैं बताऊं कि क्रायोजेनिक इंजन तो जब से सैटेलाइट छोड़ना शुरू हुआ तब से क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल शुरू हुआ, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो एक ऐसा रॉकेट इंजन है जो कि बहुत ही कम वजन का फ्यूल इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ऊर्जा दे सकता है। और PSLV और GSLV का जो अंतर है वो तो PSL में कोई क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, कोई क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और GSLV का जो मेन जो सबसे पावरफुल जो इंजन है वो है क्रायोजेनिक इंजन। और जैसे आप जानते हैं कि पहले तो ऐसा था कि रशिया हमें जो है क्रायोजेनिक इंजन देंगे, लेकिन अमरीका का ऑब्जेक्शन के बाद भारत को ये अपने आप डेवलप करना पड़ा। और ये खुशी की बात है कि अब लगातार 3 या 4 जो GSLV का परीक्षण जो है वो सफल हुआ है जिसमें भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ है।
ये बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है जिसमें GSLV मार्क 3D2 का एक चित्र बनाया गया है और उसमें जो इसके पैरामीटर्स दिए हैं उसमें इसकी लंबाई, डायमीटर, उसके प्रोपेलेंट मास, स्टेज मास ऑफ एट लिफ्ट ऑफ, बहुत सारी तकनीकी जानकारियां दी हैं जिसे हमारे श्रोता इसरो की वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और
एक बात मैं कह दूं कि ये जो रॉकेट है ये 3-स्टेज रॉकेट है, 3 स्तर।
जी,
जो पहला स्तर है वो सॉलिड फ्यूल का यानी ठोस जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है वो तरल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लिक्विड स्टेज है
जी,
और तीसरा जो कि सैटेलाइट को छोड़ता है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। यानी वो 3 स्टेज अलग अलग है, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और तीसरा जो है क्रायोजेनिक स्टेट।
जैसा कि बासु जी ने बताया कि GSLV मार्क 3D2 के ऑपरेशनल होने से, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, भारत को एक नया ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिलेगा और तमाम विदेशी सैटेलाइट जो है वो भारत से लॉन्च हो सकेंगे और एक बड़ी विदेशी मुद्रा भी
नहीं। और एक बात है, देखिए अब तक हम जो भारी सैटेलाइट जितने भी हमारे होते थे ना उसको छोड़ने के लिए हम बाहर जाते थे, अरियन जो फ्रांस को जाते थे या कहीं, अब उसकी जरूरत सब नहीं पड़ेगी
जी। और लगातार इसरो सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, GSAT-29 की टीम को, GSLV मार्क 3D2 की टीम को जिन्होंने GSAT-29 का सफल प्रक्षेपण किया। बासु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे इसरो द्वारा GSAT-29 के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वैज्ञानिक विमान बसु और पत्रकार डॉक्टर निमिष कपूर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। FM गोल्ड के श्रोताओं, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम सुर्खियों में कार्यक्रम के एक और अंक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।